उनतीस सितंबर 2020 का दिन आपके लिए मंगल में हो। आप सब भगवत प्राप्ति के लिए क्यों उन्मुख हो, आपके मन में भगवान के सिवाय और कुछ आए ही नहीं। शुभकामनाओं के साथ में आज गीता अध्याय 18 का 46वां श्लोक पढ़ती हूँ। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्व इदं ततम स्वकर्मणा तम भय सिद्धि मानवा। ये वचनों कल हमने देखा था, पढ़ा था कि चार वर्ण होते हैं और चार आश्रम, तो वर्णों के भी कुछ अपने कर्तव्य होते हैं और जो आश्रम में रहता है उसके भी अपने भेद कार्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिस ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये आया भक्तो निष्काम कर्म योग। क्या कहा भगवान ने कि परमात्मा से समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य नहीं है, हम सभी 84 लाख योनियां और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। संसार में क्या है, भगवान के सिवाय कुछ और नहीं है, तो माया का पर्दा जो हमें भगवान ही दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान तो व्यापक है, सब व्यापक है, मतलब ओमनी प्रेजेंट है। उस परमात्मा की पूजा कैसे करनी है, अपने कर्म के द्वारा, और जो ऐसा करता है उसको क्या होता है, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अथवा वो मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है, ये संसार भगवान की मूर्ति है, जैसे मूर्ति में हम भगवान को पूजते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है, तथा हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। तो भगवान कहाँ से लाएंगे आप, है ना, किससे किसका पूजन करना, संसार रूप में, ये संसार जो है भगवान का ही रूप है, उसमें चाहे कोई छली है, कपटी है, कैसा भी है, सब भगवान के रूप है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे, इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ हो, ब्रह्म शक्ति आदि भगवान की तरफ रही, जब हम पूजा करते हैं ब्रह्म मना दे इसकी पूजा करो, नहीं ये सोचे भगवान है, शक्ति हो चाहे दूसरा कोई वर्ण हो, चाहे कोई चंडाल भी हो, कुत्ता भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भगवान के स्वरूप में आए। तो कई ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने कि पिशाच या नानी मात्र में भगवान को देखा है। ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, ये नहीं सोचते कि एक शक्ति है। पूजन में मुख्य भाव ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान और भगवान के लिए ही है। गंगा जल से गंगा का पूजन, दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से ही भगवान का पूजन करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा, पर ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये भक्तजनों, संसार की संसारिक माया है, और माया तो नाम मात्र की होती है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम बिजली माँ देव जाया करते थे तो वहाँ एक धुंध होती थी, तो हमें थोड़ी दूर पर देखते थे तो वो मेरे से हिले तो है नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ भूल बहन का प्रातःकाल, वहाँ बिजली माँ देव में यही देखते थे। फिर हमारे आगे बढ़ते थे तो दूर पीछे व्यक्ति थी और हमें जिनको हमें मिलना वो व्यक्ति हमें मिल जाते थे। ऐसे ये संसार भी एक माया है, एक धुंध है, एक भ्रम है, कुछ भी नहीं। जब हम भगवान ही मानेंगे तो माया अपने आप हट जाएगी, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा करें, आदर सत्कार करेंगे, तो वह भगवान की ही सेवा होगी। यदि किसी पानी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वो भगवान की अनादर तिरस्कार होगा। इसलिए हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, जो घर आया माँ का जाया, चाहे वो दुश्मन भी आ गया तो उसमें मन देखो इसने उसने मेरे साथ ऐसा किया था, नहीं नहीं वो आ गया उसको बैठाओ खिलाओ पिलाओ। और महाराज जी भी कहा करते थे, हम सबको उन्होंने यही शिक्षा दी, वो हम प्रयत्न करते हैं कि हम भी उनकी तरह सब में भगवत बुद्धि से सब की सेवा करें। इसलिए अपने लिए कुछ ना करे मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है। कब बंधन बनते हैं, हमने कहा ना कि बंधन में मत रहो, बंधन से हमें भगवान नहीं मिलते। लेकिन कब बंधन बनते हैं, जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं, मेरे लिए मेरे बेटे के लिए उसके लिए उसके लिए, लेकिन संसार के लिए दीन दुखियों के लिए जो करते हैं वो भगवान की पूजा है। 47वां श्लोक, श्रेयां स्वधर्मो विगुणा तद्धर्मा सुनिश्चिता स्वभाव नियतम कर्म विभिन्नोती। अच्छे धर्म स्थान की ओर पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण के स्वभाव से नित किए हुए सब स्वधर्म कर्म को करता पाप को प्राप्त नहीं होता। जो अपने अपने धर्म के अनुसार काम करता है उसको पाप नहीं लगता। स्वधर्म कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाग है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रकृत भाव से अर्थात स्वार्थ अभिमान आने से लगता है। मतलब जिस मनुष्य में स्वार्थ की भावना आ गई अभिमान की, उसको पाप लगता है। श्लोक 48, सहजम कर्म कौन्तेया स्वदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भ हि दोषेन धूमेन अग्निर्बाधिता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। देखो सहज कर्म के लिए एक एग्जांपल हमने कभी तीन पढ़ा था, वो है एक मांस बेचने वाले का, कि कोई मांस बेचता है जिसका टाइम नहीं है मांस बेचना, लेकिन वो अपनी तुला को बिल्कुल ठीक रखता है ना, वो घर जाकर नहाकर स्नान करके हम अपने माँ बाप की सेवा करता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण बड़े भारी पाठ कर रहा है, यही मंत्र उच्चारण कर रहे, पर घर जाकर क्या करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भगवान किसको मिले, भगवान ये नहीं देखेगा, ये देखते हैं कि ये मांस बेचता है, वो देखते हैं कि इसका भाव क्या है, वो तो उसका कर्म है, नियत कर्म है, उसको दिया गया है, वो ऐसा वर्ण का व्यक्ति है कि उसका कर्म है ये बेचना, क्योंकि उसने बच्चों को खाना खिलाना है, तो उसमें उसको दोष नहीं लगता। पर दोष ऐसे व्यक्ति को लगता है जो कि अपने धर्म को मान कर निषिद्ध कर्म कर बैठता है। निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग होने कारण विविध कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विविध कर्म सह स्वाभाविक है, इसमें परेशान नहीं है। विविध कर्म पड़ा था ना मैं पीछे, जो कर्म ग्रंथों के द्वारा हमें दिए गए हैं बताए गए हैं वो विहित कर्म कहलाते हैं। लेकिन विहित कर्म कठिनाई करने में मनुष्य होता बड़ी कठिनाई है, लेकिन है नहीं एक सच्चे। भगवान स्व कर्म तो सहज कर्म को ही स्वधर्म मानते हैं। विहित कर्म करने में कुछ न कुछ दोष होता तो है, पर कामना सुख बुद्धि भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य कि दोष लगना या न लगना करता कि नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक है, पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य है तो ऑपरेशन में होगी काम काटने पर भी उसे दोष नहीं लगता। अब डॉक्टर ने जो कर्म ले लिया है उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोग कोई मर जाता है पेशेंट या कुछ हो जाता तो उसको कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने अपना विहित काम किया है। अतः अनुस्वार्थ भाव और रोगी के हित का अभाव होने से पुण्य होता है। श्लोक 79 असत बुद्धि सर्वत्र जितात्मा सुप्रिया निष्कर्म्य सिद्धि परमान सम्यासे अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह असत्य है, अटैचमेंट ऑफ माइंड है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो सक्रिया रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। असत्य बुद्धि आत्मा और विरुद्ध सक्रिया होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। जो हम कर्म योगी है या जो हम कर्म करते हैं, उसमें बुद्धि कैसी होनी चाहिए, किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक काम कर रहा हूँ और किसी मनुष्य के प्रति हमारी आसक्ति है, उसके लिए करना। जीत आत्मा, जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है, विघ्न सक्रिय जो स्पर्श मात्र को भी ध्यान में नहीं रखता। कर्म योग सिद्ध होने पर साधक संख्य योग का अधिकारी हो जाता है। संख्य योग से वह निष्कर्म सिद्धि प्राप्त करते हैं। निष्कर्म सिद्धि का अर्थ कर्म स्वतः कर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मों को न करना निष्कर्म नहीं है, किन्तु तो कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। कर्म तो करने, निष्कर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ के निछले बैठ बन के बैठ गए, नहीं। कर्म करना है तो आसक्ति नहीं रखनी है, आत्मा को जीत करके किसी सक्रिय नहीं करनी है। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। कर्म योग तथा ज्ञान योग से निष्कर्म सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम निष्कर्म सिद्धि होती है। दोनों में फर्क बताते हैं। वो तो होता है कि जब हम आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं तो सिद्धि मिलती है, निष्कर्म सिद्धि, लेकिन भक्ति के द्वारा तो हमें परम निष्कर्म सिद्धि मिलती है। श्लोक 50, सिद्धि प्राप्त हो यथा गम तथा मापनोती गोद में समापने वे ज्ञान से कौनते सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की पराया निष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम उससे संक्षेप में समझो। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण क्या है? मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि जो सोचने की शक्ति है वो बड़ी पवित्र होनी चाहिए, चित्त चेतना स्पष्ट होनी चाहिए। मन बुद्धि चित्त हंकार, हंकार तो बड़ा, हंकार के बिना तो मनुष्य जी नहीं सकते, इसको हम कहते हैं, लेकिन वो हम बड़ा क्या बोलूं मैं, बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए। जीने का तो है, मैंने जीना है, ये हम तो होना चाहिए ना? लेकिन ये हम नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँ, मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। साधन और कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्म योग ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में जा सकता है। कर्म योगी के जितने ज्ञान के संस्कार हैं, तो ज्ञान में चला जाएगा, वो यदि भक्ति के संस्कार है तो भक्ति में चले। पहले कर्म योग आवश्यक है, कर्म योग के बाद मनुष्य ज्ञानी भी हो सकता है और भक्ति बन सकता है। अब मैं आपको सिंधु बिंदु नामक पुस्तक की ओर ले जाती हूँ। कल हमने सिंधु बिंदु के दूसरे अध्याय के विषय में कुछ जाना था, तो पहले अध्याय था हमारा आत्मनिवेदन, और दूसरा क्या था, वसुधैव कुटुम्बकम। ये अध्याय वसुधैव कुटुम्बकम, वसुध को कुटुम्ब कैसे बनाए, ये एक प्रश्न है। बोलने को बड़ा आसान है, लेकिन इसको समझना और इस पर चलना एक दर्शन है, एक फिलोसफी है। बस का कुटुम्ब है ना, और उसमें रहने वाले हमारे सब भाई बहन हैं। तो इसके विषय में हमने जाना कि जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उनको भगवान ने अपने चेतन शक्ति दे करके चेतन बनाया हुआ है। असली में वो क्या है, मनुष्य के शरीर में क्या बताया गया, पांच कोश है, अन्य कोश, प्राणी कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पांच कर्म इंद्रियां जो कर्म करती है, हाथ, पांव, गुदा, अपस्थ और वाणी, और पांच ज्ञान इंद्रियां है, नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और जीभ। ये कितने हो गए, ये बन गए आपके पांच कोश, छोड़ दीजिए वो तो शरीर में आ जाएगा, पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए, दस। और फिर आ गया आपका मन, कितने हो गए, ग्यारह। फिर पांच तत्व आ गए, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कितने हो गए, सोलह, पांच इक्कीस है ना। फिर आ गया मन, बुद्धि, चित्त, फिर हो गए चौबीस। ये है हमारे शरीर से संबंधित, लेकिन शरीर के बीच में के भीतर जो आत्मा है वो चेतन शक्ति, भगवान की चेतन शक्ति है। और जब हम चेतन, वो ये चेतन शक्ति सब में, इसके बिना सभी जीव निर्जीव कहलाते हैं, तो एक ही चेतन शक्ति है, एक ही परमात्मा है, तो हम सब क्या बन गए, वसुधा के में रहने वाले भाई बहन, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, अंश हैं। फिर क्या बताते हैं आगे जा करके, साधना के तीन मां, कैसे हम जाने कि हम सब एक है, कौन सी साधना की जाए जिससे कि हमारे में ये भावना आए कि ये मेरा भाई है, ये कोई अलग नहीं है। तो फिर पहले बताते हैं भक्ति मार्ग, दूसरा बताते हैं ज्ञान मार्ग, तीसरा है निष्काम कर्म योग। ये तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और भक्ति के साथ सेवा अनिवार्य है। केवल किसी को मौखिक ज्ञान देना, केवल ईश्वर की पूजा करना तक अधूरे हैं। तब तक इनके साथ सेवा भाव, जब तक इनके साथ सेवा भाव नहीं जुड़ता है, कर्म सेवा बन जाता है, जबकि वो कर्म के बदले में हम कुछ नहीं चाहिए। हमारे मन में केवल एक ही भावना हो कि दुखी मनुष्य जी मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही भाई है, दुख उसका नहीं है, मेरा ही है। कैसे कर्म बिना बोले बिना बिताए होते हैं, बिना बताए होते हैं, और इन्हीं कर्मों के पुष्पों से ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। तभी हमारे मन में ये भावना आती है कि हम सब भाई भाई है, करो भाई एक दूसरे की हेल्प। अच्छा, अब एक प्रसंग आता है इसी के विषय में। दिसंबर 2001 को मैं भाई जगदीश सूर तथा शारदा जो एक्यूप्रेशर में काम करती थी, कुछ साथ लेकर प्राकृतिक जीवन केंद्र स्वस्थ लाभ हेतु आई थी। हमारी बस जी टी रोड पर प्राकृतिक केंद्र के सामने खड़ी हो गई। हमने बस से सामान उतारा और एक और खड़े हो गए। प्रातः सुबह 5 बजे का समय था, हमारे पास सामान अधिक था। इतने में दो भद्र पुरुष ब्राह्मण करते हमारे पास पहुँचे। दीदी से बात करके हमारा सामान उठाते हुए कहा, आइए और हमें आश्रम में ले गए। बाद में पता चला कि वे दो लोग आश्रम में ही आए हुए थे सेवा अपने चिकित्सा करने के लिए। आश्रम के एक कर्मचारी ने पूछा, आप कुल्लू से आए हैं, हमने कहा हाँ। वह हमें विशेष निवास में ले गया और 22 और 24 नंबर का कमरा दे दिया। हमने कमरे में बैठ विश्राम किया। सन्यासी विवेक जी ने गत रात्रि डॉक्टर सुमेर चंद जी को फोन द्वारा बताया था कि माता जी स्वास्थ्य लाभ के लिए आश्रम आ रहे हैं, इनका क्या लक्ष्य है। सन्यासी विवेक जी का परिचय डॉक्टर सुमेर चंद जी से पहले से ही था। विवेक जी श्री महादेवी तीर्थ के निःशुल्क कोषालय के अंतर्गत निःशुल्क एक्यूप्रेशर तथा प्राकृतिक चिकित्सा करते थे। उन्होंने तीर्थ के दो कार्यकर्ताओं को इस आश्रम में प्रशिक्षण लेने हेतु भेजा था। कमरे के बाहर बरामदे के दीवार पर योग मंदिर कई वाक्य लिखे हुए थे। कुछ देर पश्चात डॉक्टर सुमेर चंद्र सिंह हमारे कमरे में आए और प्रणाम करके कहा, आप स्नान आदि करके प्राकृतिक चिकित्सा की कंटीन में भोजन कर लीजिए, साथ ही चिकित्सा संबंधी फॉर्म भी भरवाए। प्रथम दिन होने के कारण मैं और शारदा आश्रम वाइस की गतिविधियों को तन में होकर देख रही थी। डॉक्टर सुनील चंद्र गुप्ता व उनके धर्मपति ने श्रीमती स्नेह गुप्ता का स्नेह भरा प्रेम तथा व्यवहार से मेरे मन को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उपचार आरम्भ हुआ। प्रातः काल 4 बजे में उठी और कमरे के बाहर प्रांगण में आ गई। अनंत आकाश में अनगिनत तारों की जिल जिलहट ऐसे लग रही थी जैसे अनेक दीप जल रहे हों। पथ के दोनों ओर नीम, आम, जामुन, पीपल के पेड़ों के बीच सैर करना भव्य लगता था। वृक्षों से टकते हुए ओस के कण जब देह से छूते तो ऐसे लगता था मानो स्वाति नक्षत्र की बूंदे हों। आश्रम के बड़े हाल में प्रातः काल योगाभ्यास अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने में बहुत सहायक होता है। इसके साथ ही परम पिता परमात्मा का गुणगान व सद ग्रंथों के पाठन से आत्म लाभ प्राप्त होता है। आश्रम के एक और निराश्रित बच्चों का आवास है। यहाँ पर नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं रहते हुए भावी जीवन का प्रशिक्षण व शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके भव्य इनके मध्य बैठकर आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। इसके आगे थोड़ी दूर पर गौशाला है जहाँ पर लगभग 15-16 गायें रहती हैं। ग्वाले इनकी देखभाल उत्तम ढंग से करते हैं। माँ से गुजरने पर जब गौ हमारी ओर देखती हैं, तो लगता है कि मानो वो कुछ कहना चाहती हैं। गोबर की भीनी भीनी सुवास बहुत ही अच्छी लगती है। आश्रम के एक और कार्यकर्ताओं के क्वार्टर हैं। ये कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों के हैं। हम सब के मध्य आपस में मिलजुल कर रहना मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाई गई वसुधा ही मेरा घर है। इसमें रहने वाला प्रत्येक प्राणी मेरा बंधु है। इस भावना को क्रियात्मक रूप देने के लिए गांधी स्मारक निधि प्राकृतिक आश्रम सहायक सिद्ध हुआ। विद्यार्थी जीवन से मैं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को क्रियात्मक रूप देने के लिए तत्पर रहती थी। मेरे जीवन में संन्यास की भावना भी इसी भावना को लेकर उजागर हुई है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 तत्वों की सहायता आवश्यक है। प्राणों का नियमन करने के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता होती है। मन को केंद्रित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। आत्मा के आनंद के लिए सेवा की आवश्यकता है। इन पांचों का एक ही स्थान पर समन्वय करके मानव जाति के उपकार की भावना से किया जो उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत सम्मिलित है। गांधी जी कहते हैं सेवा ही परम धर्म है। ऋषि विनोबा भावे जी ने मानव सेवा हेतु ही भूदान प्रारंभ किया था। पट्टी कल्याण के गांव के किसानों से आश्रम हेतु भूमि दान में मांगी थी। पंडित ओम प्रकाश त्रिखा जी व उनके धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी ने इस भूमि पर ये चमनीय बाटका स्वाध्याय आश्रम का निर्माण किया है। ये गांधी स्मारक निधि द्वारा संचालित है। चिकित्सालय की सेविका सुशीला तरारे जिनके पति हरिचंद्र तरारे जो भी इसी आश्रम में बड़े तन्मयता से कार्य करते हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मैंने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से अनुभूत होकर पास बैठे सुशीला जी बतरारे जी से कहा, सुशीला मैं तेरे घर दाल भात खाऊंगी। ये सुनकर वे मेरे मुख की ओर निहारने लगी, कुछ उत्तर ना दिया। 2-3 बार ऐसे ही हुआ, वह हंस देती और चली जाती। आखिर एक दिन मैंने फिर कहा, सुशीला ने कहा, माँ जी क्या कहूँ कैसे कहूँ, आप मेरे घर में दाल भात कैसे खाओगी, मैं तो जाती की नीच हूँ। पहली हूँ। मैंने उत्तर दिया, ओ सुशीला, मैं जाति पाति नहीं मानती, मैं तो तेरा सर स्वभाव प्रेम भरी सेवा से प्रभावित हूँ। मुझे भी भगवान ने ही आदेश दिया है कि आपके घर भोजन खाने का। सुशीला का चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा और कहा, अच्छा माँ जी, एक दिन भोजन खिला दूंगी। मैं कभी इसके क्वार्टर में नहीं गई थी। अब कुल्लू जाने का समय निकट आ गया। सुशीला ने बुलाया और प्रेम सहित भोजन करवाया। दाल भात मेरे लिए अमृत था। सुशीला में अपनी अनुजा के दर्शन होते होते थे। कुटुम्ब अर्थात परिवार, परिवार में एक ही घर के लोग रहते हैं। कुटुम्ब में दादा दादी, ताया ताई, माता पिता, भाई बहन सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार का दूसरा नाम संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में कुटुम्बी जन आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की भावना में विचार का सम्मान करते हुए रहते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक दूसरे की सेवा आत्म भाव से करते हैं। परिवार अथवा कुटुम्ब में सदैव से भावना बनी रहती है कि ये सब मेरे अपने हैं, हम सब एक हैं और एक ही बनकर रहना होगा। सबका ध्यान घर के बुजुर्गों, दादा दादी पर जाता है। यही तो हमारे जन्मदाता हैं, इन्हीं ने हमारा पालन पोषण किया है। यही तो हमारे सूत्रधार हैं। कितनी सुंदर धारणा है कुटुम्ब में। इसके साथ ही जब हम वसुधैव कुटुम्ब के शब्द पढ़ते हैं, तो इस पृथ्वी के स्वामी, सृजन करता, पालन करता का स्वामी हो आता है तथा उसके द्वारा श्रेष्ठ कि पृथ्वी के सब मानव हमारे अपने ही भाई बंधु हैं की भावना उत्पन्न होती है। इस भावना से हम परिवार से गांव की ओर बढ़ते हैं, गांव से समाज की ओर, फिर समाज से देश की ओर, फिर देश से विश्व की ओर। तो हमारे मन में विश्व वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को क्रियात्मक रूप दिया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को क्रियात्मक रूप देने से संसार में होने वाले झगड़े तथा शांति दूर हो जाती है। जब हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। अगर हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हम अपने प्रभु की गोद में ही बैठे हैं। इस भावना को क्रियात्मक देने के लिए मानव को सेवा के क्षेत्रों का निर्माण करना होगा। इतिहास तथा साहित्य साक्षी है कि आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने तथा संतों ने तथा आधुनिक संतों ने सेवा के ऐसे अनेकों क्षेत्रों का निर्माण किया है जहां पर मनुष्य सेवा द्वारा इस उच्च भावना को प्राप्त करता है। मेरे आराध्य देव ने श्री महादेव तीर्थ को संपदाओं की दीवारों को तोड़ते हुए वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का क्रियात्मक रूप दिया है। तो आज मैंने आपको वसुधैव कुटुम्बकम का के लिए एक प्रसंग जहाँ मैं जाती थी उसके विषय में बताया कि किस प्रकार लोग इकट्ठे होकर के दूसरों की सेवा में कार्य करते रहते हैं और किस प्रकार अच्छी अच्छी संस्थाओं में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और कुटुम्ब की भावना से एक दूसरे की सेवा करते हैं। इसी प्रसंग में मैं थोड़ा सा आपको सुशीला के विषय में बताती हूँ। शायद पहले भी बताया है कि सुशीला ने जब अपने घर बुलाया तो उस दिन उन्होंने डॉक्टर सुनील चंद जी से 2 घंटे की छुट्टी मांगी। क्या मैंने माता जी को बुलाया है? डॉक्टर साहब ने पूछे, क्यों बुलाया था? कि खाना खाने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी तो हमने उसको उनको बुलाया नहीं, आपने पहले बुला लिया। वो हंस पड़ी। तो वो 2 घंटे की छुट्टी लेकर पहले चली गई थी, उसका काम था मालिश करना। और डॉक्टर साहब सबसे पहले उसको मेरे पास भेजते थे, वो मेरे लिए गर्म पानी टाब वगैरह का प्रबंध करते थे। तो वो उसने चली गई। जब हम गए 1 बजे, जगदीश भाई जी अपने उधर से आए ब्लॉक से मैं और शारदा इधर से इकट्ठे होकर गए। हम थोड़ी दूरी पे उनका घर था, घर के आश्रम में उनका क्वार्टर था, तो हम उस ओर गए। तो सीता इसमें सुशीला जी ने नई साड़ी पहनी हुई थी, बड़ी सुंदर सूती साड़ी, और हाथ में थाली चुनके, ये सब कुमकुम था, जोत जली हुई थी, अक्षत भी थे, अक्षत भी थे, और सुगंधीदार लगाई थी, अगरबत्ती लगाई थी, और झट से आई बाहर आकर के बड़े आदर से हम तीनों को अपने भीतर ले गई। और भीतर जैसे हमने बरामदा क्रॉस किया, कमरे में ये छोटा सा कमरा था, एक और चपा वो लगी हुई थी चारपाई, एक और खाली जगह थी, और वहाँ पर शिरडी साईं बाबा का मंदिर बना हुआ था, मतलब बड़ा सा उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी बाबा की। वो बाबा को देखते मैंने कहा, अच्छा शिरडी साईं बाबा जी ने आपने मुझे बुलाया, यही बात है, तब शायद मेरे मन में ये आया। फिर उसने हमारी आरती जैसी उतारी, फिर उन्होंने महाराष्ट्र की भाषा में साईं बाबा की आरती गाई उतारी, फिर हम सबको करवाकर हमारा आदर सत्कार किया। फिर जो भोजन लाए तो भोजन इतना स्वादु गर्म गर्म भोजन था, स्वादिष्ट था, और हमें बड़े प्रेम से खिलाया, और जब हमें दिखाई दी तो हमारे हाथों में पैसे भी दिए। और शायद खाद्य बाजार से कुछ हो रहा था, वो भी हमें तीनों को दिए थे। तो इस प्रकार कहा वो महाराष्ट्र के भंडारा जिला की थी, और कहा हम लोग हिमाचल के थे, और कहा जाति पाति की बात उठा रही थी, तो भी हम आपस में किस प्रकार एक होकर के रहते थे, एक दूसरे को अपने मन की बात बताते थे, या एक दूसरे की सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाते थे। तो मेरे मन में भी आया, जब मैं 8 साल जाती रही, उसके बाद जब मुझे ख्याल था कि अब मैं नहीं आऊंगी, डॉक्टर साहब रिटायर हो जाने हैं, और शायद मेरे पहले कुछ ऐसा अनुभव हुआ था कि शायद मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी, तो मैंने अपनी इच्छा से कुछ उसके लिए खरीदा, सुमन जी को कह करते शकुल माता जी को, उसके हाथों में दिया, उसके आंखों में इतनी चमक आई, और वो कितनी खुश हुई। उसके बाद ना सुशीला मुझे मिली, ना मैं सुशीला को मिली, लेकिन वो कुटुम्ब कम की भावना अभी भी मेरे हृदय में उसके लिए वैसी की वैसी है। इन शब्दों के साथ गीता माँ जय माता दी।